मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 10 जुलाई 2015 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में स्वागत करता हूं मैं अपने 6 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं विनीत कुमार हरिद्वार से हैं, करण सिंह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से हैं, रोते मयूर रत्नाकर नासिक से हैं, मनीष झा दरभंगा बिहार से हैं, विधान चंद्र गुप्ता बलिया उत्तर प्रदेश से हैं और कुमार शिवरंजन सासाराम बिहार से हैं। तो विनीत, करण, रोते, मनीष, विधान और कुमार, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए और अपने को सच यह है कि तैयार करके आइए, ताकि हम दोनों मिलकर सच में उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर सकें, उन सपनों को साकार करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें जिन्होंने सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखा है और इच्छा रखे हुए हैं। तो मित्रों, आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को एक सूचना दी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, और सूचना ये थी कि फर्स्ट बैच के जो स्टूडेंट हैं विकास कुमार सिन्हा, जो भी मुंबई कस्टम में हैं, उनके नेतृत्व में एक जो एएफई क्लब है, जो एएफई के जो स्टूडेंट रहे हैं, वो दिल्ली में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसके बारे में मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को और स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो यह है कि कल कहा गया था कि मुखर्जी नगर के किसी स्थान में वो प्रोग्राम होगा, लेकिन अब जो वेन्यू है वो अब लगभग फाइनल ही हो गया है और अब वेन्यू रखा गया है प्रगति मैदान। आप लोगों को मालूम है प्रगति मैदान आईटीओ के पास में है, सुप्रीम कोर्ट के नजदीक है, बहुत ही फेमस जगह है प्रगति मैदान, और वहां सीधे मेट्रो भी जाती है, आप सब जानते हैं। प्रगति मैदान में प्रोग्राम रखा गया है और एग्जैक्ट वेन्यू तो अभी फिक्स होना है, लेकिन प्रगति मैदान में जब आप एंटर करेंगे तो जो बात हुई है, मैं थोड़ी सी लोकेशन बता दूं क्योंकि प्रगति मैदान बहुत बड़ा हिस्सा है, ताकि वहां पहुंचने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा भटके नहीं। यदि आप पटियाला हाउस की तरफ से होते हुए प्रगति मैदान जाएंगे तो बिल्कुल सामने एक गेट पड़ता है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे आप एंटर करेंगे तो सीधे चले जाएंगे तो वहां आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। इसे आप यूं कह लें कि जो प्रगति मैदान का जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल अपोजिट वाली ये जगह है। सजेशन यही दिया गया है कि वहां एक ओपन थिएटर है, दो तरह के, एक तो फलकनुमा थिएटर है वो भी ओपन थिएटर है, लेकिन वह नहीं, उसी के पास में एक और दूसरा ओपन थिएटर जैसा है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसमें सीढ़ियां स्टूडेंट्स बैठने की और बीच में परफॉर्म करने के लिए प्लेस है, वहां प्रोग्राम रखने की सोची जा रही है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स उसके आसपास पहुंच जाएंगे तो वहां काम करने वाले स्टूडेंट होंगे, उनको रिसीव करने वाले स्टूडेंट होंगे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, जो वहां स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट बैच के हैं, जो वहां लगातार मेहनत कर रहे हैं और इसको अंजाम देने में लगे हुए हैं, उसमें नो डाउट कि दो स्टूडेंट के नाम मैं आपको उनके मोबाइल नंबर भी बताता हूं, यदि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं, इनके नाम हैं, एक हैं मिस्टर रॉकी का मोबाइल नंबर है 9871442088। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, नाम है मिस्टर रॉकी और इनका मोबाइल नंबर है 9871442088। और मित्रों, जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो हैं अब्दुल रहीम गौसी का जो मोबाइल नंबर है वो है 7827 67555 91, ये भी फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं। मैं फिर से अब्दुल रहीम का मोबाइल नंबर आपसे आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, 7827675591। और इस काम को अंजाम देने में एक बड़ी टीम लगी हुई है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है। और मैं अब कुछ स्टूडेंट्स के नाम लेने जा रहा हूं। इनमें से कई स्टूडेंट्स के चेहरे तो नाम लेते समय मेरी आंखों के सामने भी हैं, मिस्टर रॉकी और अब्दुल रहीम के, तो मैंने आपको भी मोबाइल नंबर भी बताए हैं। और जो स्टूडेंट इसको सफल बनाने में लगे हुए हैं उसमें है मिस्टर जसप्रीत, अजय पंचाल, मनीषा, राधा, प्रकाश कृष्णा, नवीन, कौशाम्बी, अनुषा अग्रवाल, बिंती अग्रवाल, सुमन, नारायण वत्स, धनंजय, ध्रुव, ऋषि और डेफिनेटली कुछ नाम ही मैं ले पाया हूं मित्रों। और मैं सच कहूं तो कहना चाहूंगा कि पूरा फर्स्ट बैच जो इसे सफल बनाने में लगा हुआ है। मित्रों एक दो और जरूरी खबरें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है वो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के दोनों स्टूडेंट्स ने इस उद्देश्य से किया है, नो डाउट कि इसका लीड जो है वो फर्स्ट बैच ले रहा है, ताकि वो एकेडमी से तैयारी करने के बाद जब गए हैं तो उनका क्या अनुभव रहा है, उनकी तैयारी के अभी क्या स्तर हैं, वो आपस में एक दूसरे से मिलना भी चाहते हैं, और बट नेचुरल है कि उनकी अब तक की और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी बातें वो डिस्कस करेंगे कि परीक्षा की तैयारी आगे उन्हें कैसे करनी चाहिए। और मित्रों ये सारा का सारा रिकॉर्ड होगा और इसके बाद जो पॉइंट्स आप लोगों के डिस्कशन से उभरेंगे वो पॉइंट्स मेरे पास भेजे जाएंगे, फिर मैं उन पॉइंट्स को जो जनरल नेचर के होते हैं उन्हें मैं अपने मोटिवेशन वाले पार्ट पर सबके लिए उनके उत्तर दूंगा, और जो बहुत स्पेसिफिक नेचर के होंगे अगर यदि मुझे कुछ ऐसा लगा उसके लिए फिर स्पेशल ऑडियो तैयार करके और उन स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा। लेकिन मित्रों एक जो एक बड़ी बात है और ये बहुत है कि ये पूरी तरह से ओपन सेशन है और इसमें केवल फर्स्ट और सेकेंड बैच के ही स्टूडेंट इनवाइटेड नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो सिविल सर्विस में जरा सी भी रुचि रखता है वो इसमें बहुत प्रसन्नता और सादर के साथ इनवाइटेड है, वो इसमें आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये जो स्टूडेंट हैं इनके अनुभवों को सुन सकते हैं, इन अनुभवों से लाभ उठा सकते हैं, और बट नेचुरल कि काफी कुछ सीमा तक वो अपने अनुभव भी शेयर कर सकेंगे। तो डेफिनेटली मित्रों एक नई कोशिश है और मैं समझता हूं कि ये बहुत बहुत ही अच्छी कोशिश है। जहां तक फ्रेंड्स मेरे वहां पहुंचने का सवाल है वो मैं माफी चाहूंगा, और इस बात का मुझे सच पूछिए तो काफी दुख भी है कि मैं वहां उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन जैसे कि मेरी विकास से बात हुई है कि कुछ ऐसी व्यवस्था शायद हो कि मैं आपको एक वर्चुअल दुनिया के माध्यम से शायद आप लोगों से बातचीत कर सकूं, लेकिन अब देखते हैं इस बारे में और क्या होता है। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए किसी भी तरह का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है और न ही इसकी किसी तरह की कोई फीस है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है और डेफिनेटली जो दूसरे स्टूडेंट्स भी इसमें आएंगे, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है उसमें बहुत से ऐसे होंगे जो ऑडियो सुन रहे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो नहीं भी सुन रहे होंगे, बहुत से लोग हैं जो एकेडमी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बहुत से लोग इसमें जानने वाले भी होंगे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ये सम्मेलन होगा, लोगों का एक दूसरे से मिलन होगा और आप लोग अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे फ्रेंड्स ये बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स ने इन सब को समझा है और जो सेकंड बैच का स्टूडेंट का जो ग्रुप है डेफिनेटली वो भी इसे समझ रहे हैं जो मैं उन्हें उनके मेल के जरिए समझ पा रहा हूं। इसीलिए मित्रों मुझे लगता है कि खासकर जो दिल्ली के आसपास रहने वाले जो स्टूडेंट हैं चाहे वो एकेडमी के हों या ना हों उनके लिए एक अच्छा मौका है जब वो यहां आकर नई चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मैं सच कहूं तो वो अपनी सोच को, अपने दिमाग को, अपनी पर्सनालिटी को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जहां वह पहुंचकर वो उनमें एक्सपेंशन की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी डेफिनेटली आएगी। मेरे इसमें कोई संदेह नहीं मुझे कि इसमें शामिल होना, जहां तक मैं समझता हूं, हर स्टूडेंट के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसके लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा और इस तरह के कामों के लिए वक्त निकाला जाना चाहिए। इसके मैं बहुत अधिक फेवर में होता हूं, स्पेशली अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो। तो मित्रों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे को ऑडियो नहीं आता है, इसलिए इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अभी से कार्यक्रम के आयोजकों को, सभी भाग लेने वाले स्टूडेंट्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही सच पूछे तो ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि इसमें कुछ ऐसी चीजें निकल करके आए जो आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए सिविल सर्विस के लिए मार्गदर्शन का काम करें, आप लोगों के रास्ते को आसान बनाएं। और डेफिनेटली इसमें मेरा अपनी तरफ से जो योगदान हो सकेगा, एकेडमी जो भी कर सकेगी वो करेगी। तो आप सबकी सफलता की मैं कामना करता हूं, और जब मुझे रिपोर्ट मिलेगी कि कैसा रहा सम्मेलन और किस तरह की बातें हुई, और उसके बारे में फिर हम लोग सोमवार को बात करेंगे। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आप लोगों से और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एकेडमी है, यहां आने वाले स्टूडेंट जानते हैं कि ये एकेडमी कितनी डिसिप्लिन्ड है, कितने सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। 500 स्टूडेंट जब भोजन भी करते हैं तो किसी को पता नहीं लगता कि यहाँ 500 स्टूडेंट्स जमा है, वो भी यंग स्टूडेंट। इतने शांति के साथ, अनुशासन के साथ, मर्यादाओं के साथ वो रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चूंकि इसके साथ AFE IAS क्लब का नाम जुड़ा हुआ है, AFE का नाम जुड़ा हुआ है, तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट पहुँचेंगे वो अपने व्यवहार के द्वारा सही मायने में एक मर्यादा और अनुशासन का परिचय देंगे। और मित्रों, जो मेरे सबसे प्रिय जो शब्द है वो है डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की जो गरिमा है उसका पूरा सम्मान करेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही अपनी शुभकामनाओं के साथ अब मैं आता हूं नेक्स्ट स्टेज पर, और वो है मोटिवेशन का स्टेज। फ्रेंड्स, कल मैं आप लोगों से साइंस वर्सेज आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात कर रहा था। मैं आपको ये बता रहा था कि जो साइंस के स्टूडेंट जो इतनी बड़ी संख्या में सफल होते हैं, वो कोई रहस्य है या उनके लिए कुछ अलग से स्थान रिजर्व है, या एग्जामिनेशन का पूरा पैटर्न ही उनके फेवर में है, या सच्चाई क्या है। नो डाउट, मैंने इससे पहले भी वाले दिन में ये बात कही थी कि जो प्री था वो डेफिनेटली अभी तक ऐसा लगता था कि वो साइंस के स्टूडेंट्स के फेवर में, खासकर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के फेवर में है, इसीलिए रिजल्ट भी काफी कुछ उनकी तरफ झुका हुआ था। उसका विरोध हुआ और आप देखते हैं कि जो सी सेट का पेपर जो उनके लिए बहुत ही फेवरेबल था, अब वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। मित्रों, अगर सच पूछे तो अब अगर इसको उस तरह से विश्लेषण किया जाए तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत रूप से कि जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स हैं अब उनके लिए ये ज्यादा फेवरेबल हो गया है। अब चार पेपर उठा करके देख लीजिए, जो सिविल सर्विसेज के मेंस के जो चार पेपर हैं, या यहां तक कि प्री का जो फर्स्ट जनरल स्टडीज का पेपर है, आप उन्हें उठा करके देखिए। आपको देखने के बाद लगेगा कि इसमें से बहुत सी चीजें, बहुत से सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी कभी ना कभी पढ़ चुके हैं, या कम से कम उनसे कोई ना कोई तो वास्ता कभी ना कभी पढ़ा ही है। जबकि साइंस के स्टूडेंट अगर उनको देखेंगे तो अब आप ये बताइए कि 10th तक तो ठीक है, उन्होंने पढ़ लिया, उनको हिस्ट्री से क्या लेना देना है, उनको ज्योग्राफी से क्या लेना देना है, इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं, इन सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट्स के पास या तो ग्रेजुएशन में ये विषय हो सकते हैं, यहां तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये विषय हो सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनके पक्ष में चीजें ज्यादा हैं। लेकिन मित्रों, उनके पक्ष में चीज होने के बावजूद रिजल्ट उनके इतने पक्ष में क्यों नहीं है? देखिए, पुराने पैटर्न में भी आप जाकर के देखेंगे तो उसमें इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट की संख्या काफी थी। सी सेट से पहले के जो हमारे पास डेटा है वो बताते हैं कि लगभग लगभग मामला 45% का था, 50 to 60% ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट आते थे, रिमेनिंग में साइंस के स्टूडेंट आते थे। और मैं समझता हूं कि ये कम बड़ी सफलता नहीं है कि साइंस के स्टूडेंट भी इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मित्रों, मैं आपको यहां इसी के माध्यम से दो तीन चीजें शेयर करना चाहूंगा, और जब मैं ये बातें शेयर कर रहा हूं तो फिर से आप एक बार ईरा सिंघल के इंटरव्यू को याद करें। मैं बार बार ईरा सिंघल के इंटरव्यू की बात इसलिए अभी फिलहाल कर रहा हूं क्योंकि दूसरे इंटरव्यू मुझे देखने का मौका नहीं मिला है, दूसरों के अभी डिटेल्स भी मेरे पास नहीं है, मार्कशीट भी मेरे पास नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं अभी ईरा सिंघल तक अपनी बात सीमित रखता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको भी सूचनाएं मिलती हैं या कुछ ऐसी खबर उनके पास होती है वो प्लीज़ मुझे मेल के जरिए बताए ताकि मैं उन्हें देख सकूँ, उस प्रोग्राम को उस डाटा के माध्यम से आप लोगों को और एक ठोस तरीके से एनालिसिस करके बातें कह सकूँ। अभी मैं केवल उन बातों को रख रहा हूँ जो अल्टीमेटली होती ही हैं, मतलब उसमें कोई बदलाव होने की रत्ती भर भी संभावना नहीं है, इसलिए मैं उन बातों को लेकर ज़्यादा चल रहा हूं। मित्रों, साइंस के स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है और आर्ट्स के स्टूडेंट के साथ क्या होता है, मैं आपको यह पढ़ने की कला के आधार पर बता रहा हूं। मैं खुद भी आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं, मेरे बहुत से बैचमेट्स हैं जो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। एक मेरे बैच में स्टूडेंट थे, इत्तेफाक से उनका नाम मेरे नाम के ही समानांतर था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने प्री भी क्वालिफाई नहीं किया था, सेकेंड स्टैंड उसमें जब सेकेंड बार वो अटेम्प्ट में वो बैठे तो उसमें उनकी रैंकिंग थर्ड या फोर्थ थी और उनको कैडर मिला, थर्ड या फोर्थ रैंकिंग आई। फर्स्ट में प्री भी क्वालिफाई नहीं किया और सेकेंड में इतना हायर पोजीशन आई। और मजेदार बात ये है, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी फ्रेंड्स, वो ये थी कि मेरा एक सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर था, वो साइंस के स्टूडेंट होते हुए हिंदी लिटरेचर उन्होंने लिया। और मजेदार बात है कि हिंदी लिटरेचर में उनके मुझसे ज्यादा नंबर थे। और एक और भी मेरे ही बैच के थे जिनको कस्टम एक्साइज सर्विस मिला, जो बीएचयू के स्टूडेंट थे, उनको वो भी साइंस के स्टूडेंट थे और उन्होंने भी हिंदी लिटरेचर लिया। और मजेदार बात है कि उनके भी लिटरेचर में जो मार्क्स थे वो मुझसे ज्यादा थे, जबकि मैंने लिटरेचर में एमए किया हुआ था, लिटरेचर में पीएचडी की हुई थी। और मजेदार बात यह है कि मैं 4 साढ़े 4 साल से कॉलेज में पढ़ा भी रहा था। तो मित्रों, ये मामला क्या है, इस मामले को समझिए, इस रहस्य को आप जानिए। ये मनोवैज्ञानिक रहस्य है और ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य है। और जिस दिन आप इसको जान करके और केवल इस रहस्य को आप पकड़ लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना जबरदस्त परिवर्तन आ गया है। मित्रों, जो मैंने जो बातचीत में जो या सोच कर विचार कर जो निष्कर्ष निकाला है, अगर ये जो दो स्टूडेंट्स के मैं नाम ले रहा हूं जो मेरे बैचमेट्स रहे हैं, अगर मैं उनसे लिटरेचर पर डिस्कशन करने जाऊं तो मुझसे डिस्कशन करने की स्थिति में वो नहीं है। लिटरेचर के बारे में मेरी जितनी नॉलेज थी, सच पूछिए तो उनकी उसकी तुलना में उनकी नॉलेज 25% रही होगी, बस ये सच है। क्योंकि मेरा नॉलेज बहुत वाइड था, मेरा कंटेम्प्रेरी लिटरेचर और दूसरे भाषाओं का लिटरेचर और ये वो, इन सब चीजों पर बहुत अच्छी पकड़ थी, उनकी पकड़ उस पर अच्छी नहीं थी। लेकिन जो सिलेबस था उस सिलेबस पर उनकी बहुत परफेक्ट पकड़ थी। तो उस सिलेबस पर उनकी वो परफेक्ट पकड़ कैसे बनी, वो मुझे ये लगता है कि उसका जो कारण था वो ये था कि मुझे अपने सिलेबस के आधार पर लगता था कि मुझे तो ये मालूम है तो मैं जो आएगा वो लिख लूंगा, इसीलिए मैं एक सामान्य तरीके से उन सिलेबस के आधार की तैयारी कर लेता था। लेकिन ये जो दो स्टूडेंट थे जो साइंस बैकग्राउंड के थे, इनको ये मालूम था कि हमें कुछ मालूम नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा ज्ञान है, ये मालूम होना कि हमें कुछ नहीं मालूम है सबसे बड़ा ज्ञान होना है। तो जिसको ये मालूम होगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, तो वो बिल्कुल शुरुआत से चीजों को पढ़ेगा, वो शुरुआत करेगा, वो बेसिक्स से लेकर के चलेगा। और उसके दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो प्रत्यक्ष रूप से सबकॉन्शियस लेवल पर हमेशा वो ये सोचेगा कि नहीं, मुझे इसे भी जानना है, मुझे इसे भी जानना है, मुझे इसे भी जानना है। जैसे एक बच्चा है, आपसे कितने विचित्र विचित्र तरीके के प्रश्न करता है, ये तारे क्या हैं, आसमान क्यों चमक रहा है, ये सांप क्यों टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, विचित्र विचित्र किस्म के प्रश्न करता है। तो उसके अंदर की जो जिज्ञासा है, जिसको हम जिज्ञासु कहते हैं, वो उसे बहुत ज्यादा रिसीविंग एंड पे खड़ा कर देता है। मतलब आप कह लीजिए कि उसके अंदर एक तरह से ब्लैक होल बन जाता है नॉलेज के लिए। जैसे आपने सुना है ना कि ब्लैक होल के पास से कोई किरण गुजर ही नहीं सकती, चाहे कितनी भी फास्ट हो और कितनी भी चमकीली हो, ब्लैक होल उसको अपने में शक कर लेती है, चूस लेती है, खींच लेती है। तो जब इनके सामने से ऐसे स्टूडेंट जो ये मान के चलते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, जब कुछ चीज कुछ को भी पढ़ते हैं तो उनके अंदर का जो ब्लैक होल है, जो जिज्ञासुपना है, वो उन्हें बहुत ही तेजी से शक कर लेता है, उन्हें खींच लेता है। और नतीजा क्या होता है कि वो उनके पर्सनैलिटी का, उनके नॉलेज का हिस्सा बन जाता है। मित्रों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास जैसे अभी भी मेल आते हैं तो उन मेल में मुझे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मेल आ रहा है कि सर आपने इसमें यह अंडरलाइन किया है लेकिन इसके नीचे वाले अंडरलाइन आपने छोड़ दी है, जबकि वो अंडरलाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन है। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टूडेंट है ये मान करके चलता है कि मुझे बहुत मालूम है, साफ लग रहा है। दूसरी चीज आपको कैसे मालूम कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है? नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट, मैं एनालिसिस कर रहा हूं, हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। वैसे तो जो भी एडिटोरियल कमेंट और मैं आर्टिकल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो अंडरलाइन करता हूं वो रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अलग एंगल से उसको लेकर के कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसका अपना अलग एंगल है, थर्ड स्टूडेंट को दे दीजिए तो उसका अपना एक बिल्कुल अलग एंगल होगा, फोर्थ को दे दीजिए तो उसको उसका बिल्कुल अलग एंगल होगा। तो जब आप इस एंगल को एक्सेप्ट करते हैं तब आपका माइंड एक्सपेंड करता है, याद रखिए। और जब आप अपने ही एंगल को सब कुछ मान लेते हैं तो एक्सपेंशन की जो गुंजाइश होती है या जो माइंड में जो एक फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, जो एक पावर ऑफ रिसीविंग होना चाहिए, एक ग्रेविटेशन फोर्स दिमाग के अंदर बनना चाहिए, जिसे आप ब्लैक होल कह लीजिए, वो नहीं होता। और नतीजा ये होता है, हम पढ़ते तो खूब हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, और पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमारी तैयारी भी हो गई है, लेकिन सच यह है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो हमारे अपने बहुत गहरे तक उतरा हुआ नहीं होता। तो मित्रों, अब आप लोगों को शायद ये बात समझ में आई होगी, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार ये कहता हूं कि यहां क्लास में आने से पहले खुद को खाली करो, एम्प्टी करो, खाली करो। स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये खाली करो कैसा है, हम कैसे अपने को खाली करें? सच बात है, ये कोई बाल्टी तो है नहीं कि भैया पानी फेंक दो और बाल्टी खाली हो गई, बोतल को उलट दो तो बोतल खाली हो गई। खाली हम अपने आप को कैसे करें? खाली करने के केवल दो तरीके हैं फ्रेंड्स। एक है अपने को ईगोलेस कर देना, सारे सारे ईगो को दरकिनार कर देना, किसी चीज का भी अहम नहीं है, न तो बड़े परिवार के होने का अहम है, न फर्स्ट क्लास डिग्री पास होने का अहम है, न बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का अहम है, न अपने स्मार्टनेस का अहम है, न अपने अंग्रेजी के नॉलेज का अहम है, किसी चीज का अहम नहीं है। बिल्कुल मानसिक समरसता को स्थापित कर देना, मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं है, बिल्कुल समतल जमीन है। और फिर दूसरा जो खाली करने का होता है वो है ये बोध। जब आपके पास ईगो नहीं होगा तो फिर ये ऑटोमेटिक ये बोध आएगा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बताइए। और क्योंकि जब आपको ये लग रहा है कि आपको कुछ नहीं मालूम है, तो याद रखिए जब आपको बताया भी जाएगा तो आपका दिमाग उस समय एनालिसिस नहीं करेगा, अदरवाइज आपका दिमाग एनालिसिस करना शुरू कर देगा कि अरे ये तो मुझे मालूम है, अरे ये भी कोई बताने की चीज है, अरे ये सर क्या लेवल की बात कर रहे हैं। तो जब आपको बताया तो जा रहा है बेसिक्स, और बेसिक्स होती क्या है? पांचवीं छठवीं सातवीं लेवल की चीजें होती हैं, और आपको लग रहा है कि तो फालतू की चीज बता रहे हैं, हम तो बड़ी गलती कर दी आने के बाद, हमने तो सोचा था कि जैसे कि कोई बड़ी आइंस्टीन और न्यूटन की कोई थ्योरीज बताई जाएंगी, यहां तो सर कर्क रेखा और मकर रेखा को समझा रहे हैं, डेफिनेशन बता रहे हैं, ये तो हम पढ़ ही लेते किताब में। तो जहां समीक्षा सुनने के दौरान समीक्षा आनी शुरू हुई वहां मामला गड़बड़ाया, और जहां मामला गड़बड़ाया बेस गड़बड़ हुआ, समतल जमीन ऊबड़ खाबड़ हो गई, और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर अब फसल कैसे हो सकती है नॉलेज की, मित्रों आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में ईरा सिंघल ने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा है, लेकिन आप उस इंटरव्यू को फिर से पढ़ करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो एक टैलेंट है, शुरू से वहां जा रही है तो वहां अच्छा कर रही है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन वहां तो अच्छा ही किया होगा ना, उन्होंने बताया ना कि 99.6% कुछ मार्क्स थे, एक या दो पता नहीं कैसे कैसे किस किस मामले में गड़बड़ हो गया, पढ़ करके देखिए। तो ये क्या कारण है कि एक स्टूडेंट जब साइंस में जा रहा है तो उसमें भी अच्छा कर रहा है, एक आर्ट्स में आ रहा है उसमें भी अच्छा कर रहा है, लॉजिक में जा रहा है उसमें भी अच्छा कर रहा है, और इंटरव्यू में जा रहा है उसमें भी अच्छा कर रहा है, ऐसे लिख रहा है तो भी अच्छे से लिख रहा है, क्योंकि ऐसे तो अगर वैसे देखें तो आर्ट्स वालों की एक वो अमानत होनी चाहिए। तो वो कारण क्या है, वो कहां से चीजें आ रही हैं? वो थिएटर भी कर रही है, वो लोगों की हेल्प भी कर रही है, शारीरिक रूप से अक्षम भी है, स्टूडेंट्स के साथ वो अपने फ्रेंड्स सहेलियों के साथ घूम भी रही है, लाइफ को भी एंजॉय कर रही है, घर वालों को लग ही नहीं रहा है कि ये पढ़ भी रही है, और सबसे बड़ी बात है कि मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर रही है। यार ये क्या तमाशा हो रहा है, क्या कोई सच में अकेले आदमी इतना कर सकता है? क्योंकि मेरे पास तो मेल आते हैं कि मेरी मैं नौकरी कर रहा हूं और आई हैव नो टाइम टू स्टडी, प्लीज हेल्प मी। मुझे हंसी आती, प्लीज हेल्प मी भैया, कोई क्या हेल्प करेगा इसमें? मैं 24 घंटे को 48 घंटे बना दूं, या नौकरी जिसा जहां कर रहे हैं उनके एमडी को फोन करके कर दूं कि भैया इसको ये नौकरी में तो रख लो लेकिन पढ़ने के लिए टाइम दे दो या ऑफिस। व्हाट हेल्प कुड बी डन? क्या हेल्प की जा सकती है? हेल्प तो आप अपने आप ही खुद करेंगे, दूसरा तो केवल आपको रास्ता दिखा सकता है। तो एक लड़की इतना सब कुछ कर रही है और हमसे दो काम नहीं हो रहे हैं, तीन काम नहीं हो रहे हैं। तो मित्रों, ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये कहां है? अब केवल इस पर आप विचार कीजिए, ये प्रॉब्लम कहां है? आउटसाइड है, इनसाइड है? यूपीएससी में है या हमारे पढ़ने में है? सिलेबस में है या हमारे पढ़ने में है? कॉपी जांचने में है या हमारे लिखने में है? इन सब चीजों पर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। और मैं समझता हूं कि यही मेरा एक पर्पस भी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे मेल मेरे पास आए कि सर इसी को कंटिन्यू कीजिए, इसी को कंटिन्यू कीजिए। डेफिनेटली मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आईएएस के जो लड़के होते हैं ना, तैयारी करने वाले, उनको तो बस नॉलेज देते रहिए आप। 50 किताबें बता दीजिए, बड़े बड़े राइटर्स के नाम बता दीजिए, उनको 2-2 हजार पेज के नोट्स थमा दीजिए, तो उनको लगता है हां ये ठीक है, ये सही है और अब बात बन जाएगी। मैं कम से कम फ्रेंड्स, मैं आप मुझे सही माने या गलत माने वो निर्णय बिल्कुल आपका अपना है, लेकिन मैं इस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और ना मैंने ऐसा अपनी लाइफ में किया है। मैं टेक्निक पर यकीन करता हूं, हर चीज की एक टेक्निक होती है, एक कला होती है, और अगर हम उस कला को सीख लेते हैं तो हमारे लिए वो रास्ता आसान हो जाता है, और यदि हम उसे नहीं सीख पाते तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ये मुझे जरूर लगता है कि रास्ता कठिन जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इसके बारे में आप लोगों से काफी बात की, और मैं फिर आप लोगों से अर्ज करना चाहूंगा कि जब भी आप लोगों को कोई जानकारी मिलती है प्लीज उसके बारे में मुझे बताएं। एक स्टूडेंट ने मुझे लिखकर भेजा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट है कोई मिस्टर जैन, वो निशांत जैन, उनका ऑल इंडिया रैंक 13 है और वो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं। ये मुझे लखनऊ से जसविंदर चौहान ने ये इंफॉर्मेशन भेजी है, तो जसविंदर इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग मुझे जितना इस तरह का इनपुट प्रोवाइड करते रहेंगे, मुझे जितना मजबूत बनाते रहेंगे, डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए उतने अच्छे से काम कर सकूंगा। और मित्रों, जितने भी मेरे श्रोता हैं उन सबको मैं सच पूछे तो अपना एम्बेसडर मानता हूं। अब उन इलाकों के वो मेरे दूत हैं, मेरे मैसेंजर को आगे ले जाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, एएफई को मजबूत बनाने वाले हैं, और आप जब जितना ज्यादा मुझे इन सब चीजों के बारे में बताते रहेंगे मैं उतने ज्यादा ब्रॉड तरीके से बातें आप लोगों के सामने रख सकूंगा। तो दोस्तों, 27 मिनट हो चुके हैं, बहुत थोड़ा सा वक्त बाकी है, इसमें हम लोग एआईआर न्यूज के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। और मैंने इसको टाइम इसलिए ज्यादा दिया क्योंकि मैं इस इश्यू पर खासकर बहुत गंभीरता से और डिटेल में बात करना चाह रहा था कि आई डोंट नो एनीथिंग। जितना ज्यादा आप अपने अंदर इस भावना को ला सकेंगे, आप देखेंगे कि आप कितने ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। इसको यह मत समझिएगा कि सर इसका मतलब होता है हमारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा, नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल डिफरेंट इश्यू है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो मित्रों, अब हम आते हैं कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में देखिए तीन इंपॉर्टेंट खबरें थी, और ये तीनों इंपॉर्टेंट खबरें ऐसी हैं जिन पर हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं। मित्रों, एक बात आपको ध्यान होगा कि लगभग 10-15 दिन पहले के अपने ऑडियो में मैंने कहा था कि हम डेली 3-4 खबरों की बातें कर रहे हैं, 5 भी हो जाती हैं किसी दिन अखबारों की 3-4 क्लिपिंग्स होती हैं, तो कभी पता लगता है कि 13-14 क्लिपिंग्स भी हो जाती हैं, है ना। तो आपको समझना यह है कि इसकी रियलिटी क्या है। जो 13-14 क्लिपिंग्स होंगी आप देखेंगे कि उसमें बिल्कुल नए टॉपिक पर शायद ही 1-2 क्लिपिंग्स हो, बाकी सब पिछला जो चला आ रहा है उसी का एक्सटेंशन है या उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। बल्कि आप कह लीजिए कि बहुत से तो ऐसे होते हैं जो रिपीटेशन भी हो रहे हैं। ये मैं जानबूझ कर देता हूं, इसको आप क्वालिटी और क्वांटिटी से जोड़ करके मत देखिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी मेल आए हैं जिसमें यह है कि सर आपके में क्वांटिटी पर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब क्वांटिटी पर ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। तो मैं उस स्पष्ट करना चाह रहा हूं उसी बात को, उसी आपके दृष्टिकोण को, कि जो क्वालिटी है क्वांटिटी है आपको इस नजरिए से, एनालिटिकल नजरिए से देखना पड़ेगा, गिनती से आप उसको नहीं समझ पाएंगे। अब आज की जो तीनों खबरें हैं, सच पूछिए तो वो पिछले खबरों की एक्सटेंशन है। अगर पिछले कोई इंपॉर्टेंट खबर होती और वो भी आज ये 2-3 और हो जाती तो पता लगता आज की खबरों की संख्या 7 हो गई, जबकि रियलिटी में 1 भी नहीं है, उन्हीं का एक्सटेंशन है। है ना। तो थोड़ा सा अपने अंदर फ्रेंड्स आप एनालिटिकल विजन डेवलप कीजिए, चीजों को देखने के जो स्फीयर हैं, जो डायमेंशंस हैं, उनको बढ़ाइए, क्योंकि सिविल सर्विस के लिए ये बेहद जरूरी है। एक खबर थी व्यापम घोटाला, राइट। व्यापम घोटाले के बारे में क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जांच सीबीआई करेगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को हटाने को लेकर के भी बात हो रही, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, फिर हाई कोर्ट ने उसे गलत ठहराया कि नहीं, राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। तो ये एक खबर थी, ये पिछले खबर का एक्सटेंशन है, घटनाएं हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आज एक शब्द आपको दे रहा हूं, जो दो तीन दिन मैं पढ़ रहा था कहीं, तो मुझे किसी जगह ये शब्द मिला, इस पर आप दो दिन तक विचार कीजिएगा, सैटरडे संडे आपके पास छुट्टी है, मैं कभी आपसे फिर इसके बारे में बात करूंगा। एक नया वर्ड मुझे पढ़ने को मिला और बहुत अच्छा लगा, और वो ये तो वर्ड था कि क्या अब हम एक जुडिशियल डेमोक्रेसी में एंटर कर गए हैं, न्यायिक लोकतंत्र। एक बहुत अच्छा शब्द मिला, न्यायिक सक्रियता। तो देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आप पढ़ते हैं, लेकिन यह शब्द मिला है जुडिशियल डेमोक्रेसी, और यह शब्द मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, और कोई ताज्जुब नहीं कि ये शब्द और आगे जोर पकड़े। तो दिसंबर में ये पूछ लिया जाए कि क्या हम जुडिशियल डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। एंड याद रखिए कि जुडिशियल डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द जुडिशियल एक्टिविज्म, दोनों को एक समझने की गलती मत कीजिएगा, इस पर सोचिएगा, फिर हम लोग कभी इस पर बात करेंगे। ये शब्द मिल गया। इसके बाद मित्रों दूसरी जो खबर थी वो थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो अभी मध्य एशिया और रूस की यात्रा पर गए हुए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि जो यूएनओ है अब इसमें सुधार होना चाहिए। यूएनओ में सुधार की बात बहुत हो रही है और आप लोगों को मालूम है, खासकर फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट्स को, कि इस पर एक आपको स्पेशल ऑडियो भी प्रोवाइड किया गया है। तो यूएनओ में सुधार कैसे हो सकता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये विचार करने की बात है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें वहां रखी है, अब हम देखते हैं कि शायद इस पर अब आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स आने शुरू हों, लोग अपने अपने विचार रखेंगे कि क्या सुधार होने चाहिए। वैसे इस पर लगातार आर्टिकल्स भी आते ही रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि अभी हमारे पीएम ने डिमांड की है, इससे पहले भी कोई कोई डिमांड करता रहता है, और ये बहुत ही रियलिटी भी है। थर्ड जो न्यूज थी दोस्तों वो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, वो है यूटिलिटी ऑफ ब्रिक्स। जो ब्रिक्स जो समूह के देश है, पांच देश, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब यूएनओ वगैरह से जब मोह भंग हो रहा है, तो एक पैरेलल इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हुए। ब्रिक्स उसी में से एक इंस्टीट्यूशन है, बैंक भी बनने शुरू हो गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पैरेलल आप देख रहे हैं, ब्रिक्स बैंक बन रहे, एडीबी बैंक बन रहे, इस तरह से बैंक बनने शुरू हो गए। तो ब्रिक्स क्यों इन देशों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी बड़ी डिटेल खबर न्यूज में थी कि ब्रिक्स में क्या 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 चीजें जोड़ी गई हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज, अभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस ऑडियो के खत्म होने के बाद न्यूज को फिर से सुने। न्यूज के बीच में हमारे पीएम ने ब्रिक्स के कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं कि ब्रिक्स ने ये शुरू किया है, ये शुरू किया, ये शुरू किया है, उन्हें नोट कर लें, और वही आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों ये तीन न्यूज मुझे एआईआर की इंपॉर्टेंट लगी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की है। अब नेक्स्ट स्टेज है अखबारों की क्लिपिंग्स की, और आज ढेर सारी क्लिपिंग्स मैं आपके अखबारों की आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग देख लेंगे। उनके बारे में मैं आप लोगों से बात नहीं करने जा रहा हूं क्लिपिंग्स के बारे में, क्योंकि ऐसा कुछ विशेष है नहीं जिनके बारे में मैं आपसे बातें करूं। और मित्रों अब अंतिम चरण ईमेल का, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे ईमेल आज मेरे पास आए हुए हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनके प्रति भी आभार, और जिनके नाम ले रहा हूं उनके प्रति भी आभार और धन्यवाद। दोस्तों कुछ के नाम हैं, रोहित गोयल, पूनम भट्ट, मनोहर दत्त मिश्र पटना, सिंपी कुमारी बेगूसराय, सत्यपाल रघुवंशी जबलपुर, रितेश ग्वालियर, गुणेश कौशल दुर्ग छत्तीसगढ़, रजत बोलपुर, कल्याणी जयपुर, बी एस मीना जयपुर, उत्कर्ष दीप शौर्या ग्रेटर नोएडा से, ध्रुव वर्मा फरीदाबाद, और अमित अमृतसर से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और अंत में सूचना यह है कि कल सैटरडे है, आपको कुरुक्षेत्र और योजना पत्रिका के आर्टिकल्स मिलेंगे, बट नेचुरल है कि अखबारों की क्लिपिंग्स आपको मिलेंगी ही, और स्पेशल ऑडियो स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के हैं उनको भेजा जाएगा। और मित्रों इसी के साथ ही अब मैं इसे यहीं समाप्त करना चाहूँगा, आप लोगों की अनुमति चाहिए, और एक बार फिर से जो प्रोग्राम 12 तारीख को संडे को एएफई के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं करने जा रहे हैं। विकास सिन्हा जो हैं जिसका नेतृत्व कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, टीम के नाम मैंने बताए हैं, बाकी जिनके नाम नहीं लिए जा रहे हैं डेफिनेटली वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी उसी टीम के ही हिस्से हैं। उन सब के वहाँ इकट्ठे होकर बातचीत करने की सफलता की मैं कामना करता हूँ, और एक बार फिर से जो दूसरे स्टूडेंट भी हैं उन्हें विकास सिन्हा की तरफ से, उनकी पूरी टीम की तरफ से, फर्स्ट बैच और सेकंड बैच की तरफ से, अपनी तरफ से और एकेडमी की तरफ से भी उन्हें आमंत्रित करता हूँ। तो मित्रों, अब मैं इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।